हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अर्णव जा चुका था और धृति के पास करने को ढेरों काम थे, इसलिए उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपने काम निपटाने लगी। जैसा कि वो कह गया था, शाम को ही लौटा था। उसके ऑर्डर्स के अनुसार धृति ने दोनों की पैकिंग कर ली थी और साथ ही वक्त मिलने पर अपने डिज़ाइनों पर भी थोड़ा काम कर लिया था। 7 बजे दोनों यहाँ से निकले। धृति को जिंदगी में पहली बार हवाई यात्रा में बिजनेस क्लास में सफ़र करने का सुनहरा मौका मिला था। उसे इस यात्रा के लिए पहले तो ज़रा भी खुश नहीं थी। सुबह उठने के बाद से उसने अर्णव से दूरी बनाई हुई थी, जिसकी वजह न वो खुद जानती थी और न ही अर्णव। अब जब अर्णव के साथ अकेले उसे इतनी दूर जाना पड़ रहा था, इसलिए वो ज़रा भी खुश या एक्साइटेड नहीं थी। पर जब प्लेन ने उड़ान भरी और वो बादलों के बीच पहुंच गया, तो धृति के मासूम से चेहरे पर खुशी का नूर बिखर गया। अधरों पर मुस्कान सजाए सितारों से चमकती आंखों से वो बड़ी ही उत्सुकता से बाहर चारों ओर बिखरे बादलों को देखने लगी। अर्णव उसके बगल में बैठा फैशन मैगजीन पढ़ रहा था, पर निगाहें बराबर धृति पर बनी हुई थीं, जो इस वक्त एकदम छोटी सी बच्ची जैसी क्यूट और प्यारी लग रही थी। धृति के चेहरे की खुशी उसके अधरों पर मुस्कान बनकर सज चुकी थी। लगभग 3 घंटे बीत गए, पर धृति ने इन 3 घंटों में एक पल के लिए भी निगाहें इधर उधर नहीं की। फ्लाइट लैंड हुई और अपने लगेज के साथ दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, जहां उन्हें रिसीव करने के लिए पहले से गाड़ी मौजूद थी। ड्राइवर ने दोनों को ग्रीट किया, उनका सामान रखा और दोनों वहां से निकल गए। फ्लाइट 10 बजे के करीब लैंड हुई थी। रात का वक्त था और इस वक्त दार्जिलिंग रात के स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। धृति सीट की बैक से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। अधखुली खिड़की से इठलाते हुए हवा का झोंका गाड़ी में दाखिल हो रहा था और धृति के चेहरे पर बिखरते हुए उसके चांद से चेहरे को जुल्फों के बादलों से ढकते हुए खुद में ही खिलखिला उठता था। आकाश में रोशन चांद की चांदनी इस वक्त धृति के चेहरे पर बिखर रही थी और अलग ही कशिश खुद में समेटे वो हसीन चेहरा उसकी धड़कनों में बसने लगा था। रास्ता कटा और गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर जाकर रुकी। अपना सामान लेकर दोनों अंदर चले आए, जहां पहले से उनके लिए रूम बुक थे। रिसेप्शन पर अपने रूम का कार्ड लेकर वो रूम तक पहुंचे। ड्राइवर उनका लगेज रखकर चला गया। थकान से चूर धृति वहीं सोफे पर पसर गई। असल में आज सुबह से उसने एक पल भी आराम नहीं किया था। यहाँ आना था तो जल्दी जल्दी पैकिंग निपटाकर अपने काम में लग गई थी और उसके बाद सफ़र, तो काफ़ी थकान हो गई थी उसे। अर्णव ने एक नज़र उसे देखा, फिर लगेज लेकर अंदर रूम में चला गया। कुछ देर बाद चेंज करके और फ्रेश होकर वापस वहां पहुंचा। धृति अब भी वैसे ही आंखें मूंदे सोफे पर पसरी हुई थी। धृति, उठो और जाकर कपड़े बदलकर फ्रेश हो जाओ, तब तक खाना भी आ जाएगा, फिर खाकर सो जाना। अर्णव ने उसके कंधे को थपटाते हुए उसे उठाया। धृति अलसाई से उठी और सुस्त कदमों से रूम में चली गई, जबकि अर्णव अपने फ़ोन पर उंगलियां चलाते हुए डिनर के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद डोरबेल बजी तो अर्णव ने जाकर खाना ले लिया। उसने उसे टेबल पर लगाया, फिर धृति को बुलाने कमरे की ओर बढ़ गया। पर कमरे की दहलीज पार करते ही उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और नज़रें बेड पर ठहर गईं, जहां इस वक्त धृति बिछौने पर उल्टी पड़ी गहरी नींद में सोती मालूम पड़ रही थी। अब भी वो उन्हीं कपड़ों में थी जिनमें आई थी, यहां तक कि सैंडल्स तक नहीं खोली थी उसने, यूं ही बेड पर अचेत पड़ी थी। अर्णव उसको इस हाल में यूं सोते देखकर पहले तो ब्लैंक सा खड़ा रह गया। उसने तो धृति को कपड़े बदलने भेजा था, पर उसे कहां अंदाज़ा था कि धृति इतनी थकी हुई है कि ऐसे ही सो जाएगी। कुछ पल बाद अर्णव धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास आया और उसके सिरहाने के पास बैठ गया। उसने उसके चांद से चेहरे पर बिखरी जुल्फों को अपनी उंगलियों से पीछे की ओर समेटा और बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को निहारने लगा। गहरी नींद में सोई थी वो, पर अर्णव के उंगलियों के स्पर्श के चेहरे पर फिसलने के आभास से कसम सा उठी थी, पर जल्दी ही एक बार फिर गहरी नींद में सो गई थी। शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी वो। अर्णव उसके पास बैठा कुछ देर तक बड़े ही प्यार से उसे निहारता रहा, फिर उठकर उसके पैरों के पास आया और उसके सैंडल्स को खोलकर एक तरफ को रख दिया। अपनी बाहों में उठाते हुए उसे सीधा करके ठीक से सुलाया और खुद उसके बगल में कोहनी बेड से टिकाए तिरछा होकर लेट गया और गाल पर हथेली टिकाए बड़े ही प्यार से उसके जुल्फों के साथ खेलने लगा। बाहर रखा खाना कप का ठंडा हो चुका था और यहाँ अंदर कमरे में धृति को निहारते हुए अर्णव नींद की आगोश में समा चुका था। अगले दिन सुबह के 3 बजे ही अर्णव उठकर बैठ गया। धृति अब भी सो रही थी। बाहर अब भी घोर अंधेरा था, जिसका छटना अभी बाकी था। अर्णव ने घड़ी में टाइम देखा, फिर धृति को ढकते हुए प्यार से उसके माथे को चूमकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद नहाकर लौटा और कदम धृति की ओर बढ़ा दिए, जो हर बात से बेखबर अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। अर्णव अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए उसकी ओर बढ़ गया। धृति उठो। अर्णव की बर्फ सी ठंडी उंगलियों ने धृति के गाल को छुआ और अगले ही पल धृति ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोल दीं। फटी आंखों से सामने मौजूद अर्णव के चेहरे को देखने लगी, जो अर्णव के उसकी ओर झुके होने के कारण उसके बेहद करीब था। अब भी उस पर नींद की खुमारी छाई हुई थी। ठंड के एहसास से आंख जरूर खुल गई थी, पर दिमाग अब भी नहीं जागा था। वो फटी आंखों से कुछ पल ब्लैंक सी अर्णव को देखती रही, जो उसके अचानक जागने से खुद को चौंक सा गया था, पर फिर जल्दी ही संभलते हुए वो पीछे हट गया और ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ते हुए बोला, अब उठ गई हो तो जाओ, जाकर जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। धृति उसके पीछे हटते ही झट से उठकर बैठ गई थी और महसूस कर रही थी अपनी बढ़ी धड़कनों का शोर। अपनी बिखरती सांसों को संभालने की कोशिश में लगी थी। उसके कानों में जैसे ही अर्णव के शब्द पड़े, वो एक बार फिर चौंक गई। उसने नज़र घड़ी की ओर घुमाई, फिर चौंकते हुए बोली, अभी तो ठीक से 3:30 भी नहीं बजे हैं, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है हमें, जो आप मुझे तैयार होने कह रहे हैं। अर्णव के कानों में धृति के शब्द पड़े और उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। वो झटके से धृति की ओर पलटा और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, कहीं जाना है तभी कह रहा हो ना, और आजकल तुम मुझसे बहुत सवाल जवाब करने लगी हो। चलो चुपचाप जाकर नहाकर तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाएंगे हम, और तुम जानती हो मुझे लेट लतीफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद। अर्णव ने सख्त निगाहों से उसे घूरते हुए बाथरूम में जाने का इशारा किया और वापस ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गया। धृति पहले तो आंखों की पुतलियां फैलाए अचंभित से उसे देखती रही। टू बी कंटिन्यूड।